हरे कृष्ण। तो आज हम जो महान वैष्णव आचार्य है श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनके जीवन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आज उनका तिरुभाव दिन है। हम जब भौतिक जगत में भक्ति करने का प्रयास करते हैं तब कभी कभी हमें अकेलापन महसूस होता है। इतने सारे भक्ति लोग हैं और उनमें से हम बहुत ही थोड़े से लोग भक्ति कर रहे हैं। उसी कारण कभी कभी हमें लगता है कि क्या हम सही मार्ग पर चल रहे हैं और क्या हमें फल प्राप्त होगा। इसीलिए जब हम देखते हैं कि भूत काल में सनातन काल से बहुत महान महान हस्तियां भी इसी भक्ति मार्ग से चल रही है, तो उससे हमारा विश्वास बढ़ता है, हमारा उत्साह बढ़ता है। जब हम पूर्व आचार्यों के जीवन का चर्चा करते हैं, वी आर इंस्ट्रक्टेड एंड इंस्पायर्ड, हमें प्रेरणा मिलती है और हमें उपदेश भी मिलता है। प्रेरणा मिलती है कि उन्होंने ये मार्ग का पालन किया है तो हमें भी करना चाहिए। उपदेश मिलता है कि हमें कैसे हमारे जीवन भक्ति के तत्वों को उतारना चाहिए, उनके आदर्श उदाहरण को देखकर और उनकी शिक्षाओं को समझकर। तो हर एक आचार्य जो है वह भगवान का प्रतिनिधित्व करता है करते हैं, पर साथ साथ हर एक आचार्य ऐसे नहीं है कि तोते के समान है वही संदेश। जैसे प्रभुपाद जी बोले थे भगवद्गीता यथारूप, यथारूप का मतलब ये नहीं है प्रभुपाद जी ने परंपरा में भगवद्गीता का हमें ज्ञान प्रदान किया है, ये सत्य है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक आचार्य तोते के समान वही शब्द बार बार दोहराते रहते हैं। यद्यपि सब आचार्य एक ही संदेश दे रहे हैं पर वो उनका व्यक्तित्व और उनकी परिस्थिति इन दोनों के अनुसार वो संदेश को प्रदान करते हैं। तो इसीलिए हर एक आचार्य का अपना चरित्र होता है और वही सब कृष्ण भक्त है, पर उनका विशिष्ट चरित्र होने के कारण हम उनके जीवन से प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं और उनके परिस्थितियों में उन्होंने कृष्ण भावना को कैसे उतारा अपने स्वयं के जीवन में और लोगों को प्रचार करते समय, उससे हम देख सकते हैं कि कैसे हम आधुनिक जीवन में अभी के परिस्थिति में 21वीं सदी में हम कैसे कृष्ण भावना का प्रचार कर सकते हैं। तो ये प्रवचन हम तीन विभाग में लेंगे। सबसे पहले जो भक्ति सिद्धांत ठाकुर का जो जीवन था उसकी पार्श्वभूमि, उस समय क्या सामाजिक परिस्थिति थी, उसको हम ऐतिहासिक दृष्टि से देखेंगे। फिर दूसरी परिस्थिति में हम देखेंगे कैसे भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने गौड़ी वैष्णव का धाम का प्रचार करते समय क्या क्या दिव्य कार्य किए, किस तरह से उन्होंने परिस्थिति के ऊपर विजय प्राप्त करते हुए भक्ति का प्रचार किया। और अंत में देखेंगे कि कैसे श्री प्रभुपाद जी ने हम तक वही संदेश आज पहुंचाया है और हम किस तरह से इस संदेश को हमारे जीवन में और प्रेरणा से उतार सकते हैं। तो पहला थोड़ा ऐतिहासिक भाग समझने का प्रयास करेंगे। भक्ति सिद्धांत ठाकुर का जन्म 1870 में हुआ और वो 1937 में 70 साल के लिए जिए गए। तो जब उनका जन्म हुआ तब भारत अंग्रेजों के राज्य में था और हम भारत का इतिहास देखते हैं तो सनातन काल से भक्ति चली आ रही है, पर लगभग सदी 1000 में 1000 से मुसलमान लोगों ने भारत पे आक्रमण चालू कर दिया और जितना ये आक्रमण बढ़ते गया उतना जो वैदिक धर्म था वो उध्वस्त होते गया, क्योंकि जहां भी मुसलमान लोग जाते थे वहां पे वो मंदिरों को उध्वस्त करते थे। जो उनका ऐसा नास्तिक भाव इस तरह से था कि बोले कि विग्रहों में कोई मूर्ति नहीं है, और साबित करने के लिए वो क्या करते थे, जो मंदिर के पुजारी होते थे वो पुजारी का सिर काट के उसके खून से उस विग्रह का अभिषेक करते थे और लोगों को दिखा देते कहां है तुम्हारे भगवान। तुम सोचते हैं विग्रह में भगवान है, कोई भगवान नहीं है, किसको किसकी रक्षा कर रहा है। तो इससे क्या हो गया, लोगों की श्रद्धा उड़ गई और श्रद्धा उड़ गई तो अभी भगवान दिव्य है, भगवान चाहे उनकी इच्छा होगी तो
एक खंबे से भी प्रकट हो सकते हैं, भगवान नहीं चाहे तो। अगर ना भगवान चाहते हैं कि नास्तिकवादी को अपना नास्तिकवाद बनाए रखे ताकि वो और पापी कार्य करके नरक में जाए, तो भगवान वो भी कर लेते हैं। फिर जैसे अभी जैसे जो भारत पे आक्रमण करने वाले लोगों ने किया, वैसे ही फिर रावण भी जानते हैं। रावण क्या करता था, रावण ऋषियों और उसको जब खाना खाता था उसको फेवरेट खाते क्या था, ऋषियों और ब्राह्मणों का कमास का स्वादिष्ट खाना था। तो इसीलिए भगवान श्री रामचंद्र जब रामटेक में आए थे तो उन्होंने देखा कि बड़े हड्डी पड़ी हुई है, हड्डियों का ढेर पड़ा हुआ है। उन्होंने पूछा वहां पे ऋषि क्या है, बोले कि यहाँ पे राक्षस रहते हैं, यहाँ पे बहुत ऋषि तपस्या कर रहे थे और उन्होंने आकर ऋषियों ने आकर राक्षस ने आकर उनको खा लिया, तो उनकी हड्डी यहाँ पे पड़ी हुई। तभी भगवान ने व्रत लिया कि मैं इस संसार से सारे राक्षसों का विनाश के संसार को राक्षस से मुक्त कर दूंगा। तो भगवान की इच्छा से कभी कभी जो अनैतिक या आसुरी शक्तियां है वो आगे बढ़ती है। तो इसके कारण क्या हुआ था, एक और से क्योंकि खास करके जो मुसलमान लोग थे उनका जो टारगेट था, टारगेट मतलब जो उनका उद्देश्य था आक्रमण करने का, वो जो वैदिक संस्कृति का प्रचार कर रहे जो ब्राह्मण है ऋषि है वो था, क्योंकि उनका सोचना था, उन्होंने पहले तो जोर जबरदस्ती करके सब हिंदू लोगों को मुसलमान लाने का प्रयास किया और उन्होंने देखा कि हो नहीं रहा है क्योंकि हिंदू लोगों की बहुत श्रद्धा है। तो इसी वजह से श्रद्धा आ कहां से रही है कि ये ब्राह्मणों से आ रही है, ये ऋषियों से आ रही है, तो उन पे आक्रमण करना। तो जो औरंगजेब राजा था तो उसका नियम था कि रोज 20,000 जो जनेवे है उसके दरबार में लाने चाहिए, मतलब 20,000 ब्राह्मणों को या तो मुसलमान बनाना चाहिए या उनका वध करके उनका जो जनेवा है लाना चाहिए। तो इस तरह से क्योंकि जो ब्राह्मण है वो तो या त्रस्त हो गए थे या उनका वध हो गया था या कन्वर्ट हो गए थे मुस्लिमों में, तो उसके कारण वैदिक धर्म क्या है और उसका पालन कैसे करना है ये बताने वाला कोई नहीं था। और उसके कारण जो साधारण लोग थे वे बहुत से अंधश्रद्धाओं में मग्न हो गए। तो जो धर्म है वो वास्तव में दो उसके पहलू है, एक है तत्व ज्ञान और दूसरा है संस्कृति। जैसे विज्ञान में आता है दो पहलू है, जैसे थियोरी और एक्सपेरिमेंट, वैसे ही तो जैसे अभी हम सब मोबाइल इस्तेमाल करते हैं तो मोबाइल कैसे चलता है ये बहुत कम लोगों को पता होता है। वास्तव में क्या तंत्र ज्ञान है, क्या विज्ञान है उसका, कैसे यहां से हम बटन दबाते तो किसी और दुनिया में कहीं और व्यक्ति उससे बात करना है, कैसे होता है ये पता नहीं है, पर जो इस्तेमाल करते हैं वो हजारों लोग इस्तेमाल करते हैं। तो उसी उस तरह मतलब हम विज्ञान में देखते हैं कि विज्ञान का जो ज्ञान है बहुत कम लोगों को पता है, विज्ञान में जो तंत्र ज्ञान है वो बहुत से लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक उस तरह से जो आध्यात्म है उसमें है फिलोसॉफी और रिलीजन या कल्चर, कल्चर संस्कृति और धर्म वास्तव भारत में एक ही था। तो जो तत्व ज्ञान है बहुत कम लोगों को पता होता है, जो संस्कृति है सब लोग उसको अपनाते हैं। जैसे हम देखते हैं मंदिर में आते हैं तो अगर प्रवचन होगा तो बहुत से लोग सोते हैं, इंतजार करते हैं कब प्रवचन खत्म होगा, पर कीर्तन होगा तो नाचते हैं गाते हैं, प्रसाद है सरया है तो प्रसाद आनंद से लेते हैं। तो संस्कृति है वो अधिकांश लोग समझ सकते हैं आसन और उसका महसूस कर सकते हैं आनंद, पर जो तत्व ज्ञान है वह समझना मुश्किल है। एक और उदाहरण हम देते समझने के लिए, ऐसे जो आध्यात्म है ये एक ट्रीटमेंट के समान है, ये एक दवाई के समान है। तो दवाई में एक होता है डायग्नोसिस और दूसरा होता है प्रिस्क्रिप्शन। तो डॉक्टर ने क्या बताया है, ये दवाई किस बीमारी के लिए दवाई क्यों दी है, ज्यादा लोग नहीं समझ पाते, पर वो दवाई का फायदा सब लोग ले सकते हैं, दवाई लेके वो ठीक हो सकते हैं। तो उस तरह से जो वैदिक संस्कृति में जो ब्राह्मण या तो उन पर आक्रमण हुआ था या फिर वे खुद इसी गर्व में थे कि हम जाति से ब्राह्मण हैं, और वे जो गुण थे जो ज्ञान था ब्राह्मण को उनको पता नहीं था, अर्जित नहीं कर रहे थे, उसके कारण वैदिक धर्म में बहुत ग्लानियां हुई। और भक्ति विनोद ठाकुर जब उन्होंने उनको गौड़ीय वैष्णव धर्म समझना था वास्तव में, तभी उनको चैतन्य चरितामृत ढूंढना था तो कई साल लगे। चैतन्य चरितामृत तो गौड़ीय वैष्णव का प्रधान व्रत है और भक्ति विनोद ठाकुर बंगाल में ही थे और चैतन्य महाप्रभु बंगाल में ही आए थे, सिर्फ 200-300 साल पहले आए थे, फिर भी वो मिल नहीं रहा था क्योंकि चैतन्य चरितामृत जो है तत्व ज्ञान का ग्रंथ है, सब तत्व ज्ञान है। तो चैतन्य महाप्रभु लीलाएं सबको पता थी पर उनका तत्व ज्ञान किसी को नहीं पता, और उसके कारण वैदिक धर्म में भी बहुत से लोग धर्म के नाम पे बहुत गलत कार्य कर रहे हैं। जैसे सहजिया लोग आ गए थे, सहजिया लोग क्या थे कि सहजिया लोग वास्तव में जो भगवान और गोपियों की लीला है उसका अनुकरण करते और कहते थे ये सब दिव्य है और उसके कारण बहुत अनैतिक कार्य हो रहे थे। और ये जब 1860 मतलब 1757 में वो प्लासी का युद्ध हुआ था, जब अंग्रेजों ने भारत पे लगभग राज्य प्राप्त कर लिया और तब तक मुसलमान लोगों का राज्य कम हो गया था। वास्तव बंगाल में उनका राज्य था काफी समय तक, बहुत से मुस्लिम भी देश जब विभाजन हुआ तो बांग्लादेश मुसलमान लोगों से काफी भरा था। पर जो अंग्रेज लोग आए थे वो सबसे पहले बंगाल में आए, कलकत्ता में आए, इसीलिए 1911 तक कलकत्ता ही अंग्रेजों का जो भारत का राजधानी था। वो पोर्ट है, बेट है, वो सागर के पास में है तो कभी आसानी से हम जो व्यवहार है कर सकते हैं। पर जब दूसरा महायुद्ध आने लग गया पास में तो उन्होंने सोचा कि ये बहुत तट के पास में है, अगर वो राजधानी हार गए तो फिर सारा राज्य हार जाएगा, इसलिए उन्हें अंदर दिल्ली में राजधानी ले ली। तो जो जब ब्रिटिश लोग आए थे तभी वे पहले बंगाल में आए, जो रॉबर्ट क्लाइव थे उन्होंने पहले बंगाल जीता और वहां से सारा भारत जीता। और जो ब्रिटिश लोग थे उन्होंने अभी मुसलमान लोगों थे उन्होंने सीधे मंदिर उद्वस्त किए, लोगों को ब्राह्मण लोगों को मार डाला, जबरदस्ती कन्वर्ट किया तलवार के बल पे। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जो मुसलमान लोग आते एक हाथ में कुरान एक हाथ में तलवार, या तो कुरान स्वीकार करे मुस्लिम बन जाओ नहीं तो हम सर काट देंगे। तो ये क्रिश्चियन लोगों ने, जो अंग्रेज लोग आए थे वो अधिकांश क्रिश्चियन थे, उन्होंने ऐसे नहीं किया, उन्होंने बौद्धिक स्तर पे वैदिक धर्म पर आक्रमण किया। तो उन्होंने कैसे किया, उन्होंने तो मुसलमान लोगों ने मंदिर तोड़ दिए, पर जो क्रिश्चियन लोगों ने जो श्रद्धा लोगों को मंदिर में जाती थी वो श्रद्धा तोड़ने का प्रयास, तो बाह्य रूप से उन्होंने आक्रमण नहीं किया पर वास्तविक रूप से और तीव्र रूप से आक्रमण किया उन्होंने। तो उस समय के जो क्रिश्चियन मिशनरी लोग जो उनकी जो वार्तालाप है तो वो लिखा है वो ऐसे रहते कि 100 साल में हम ये सारे हिंदुस्तान को क्रिश्चियन बना देंगे, ऐसी उनकी अपेक्षा थी। और फिर सारी मूर्ति पूजा बंद कर देंगे, सारे स्थापित खोली पवित्र स्थल है वहां पे कोई नहीं जाएगा, सारे जो अंधश्रद्धा के नाम पे जो वैदिक धर्म चला उसका सबका नाश बंद हो जाएगा और सब जो ईसा मसीह है उसके सत्य धर्म में स्वीकार हो जाएगा। फिर बौद्धिक स्तर पर उन्होंने बहुत आक्रमण किया और अलग अलग जो धार्मिक रीति रिवाज थे उनका वो निंदन करते थे, और जो सब देवी देवता भारत में थे उनमें से सबसे अधिक निंदा वो कृष्ण की करते। अलग अलग देवी देवता है, अलग अलग देवी देवता है बहुत, उनके लिए बहुत विचित्र लग रहा था। पर खास कृष्ण जो थे क्योंकि उनकी रासलीला है, उनका कुरुक्षेत्र में जो कार्य है वो बहुत आसानी से अनैतिक लग सकता है। तो 1860 में जो क्रिश्चियन लोगों ने इंग्लैंड भारत में कोर्ट केस किया, ये कृष्ण जो है ये अनैतिक भगवान है और उनके जो भक्त है वो भी अनैतिक है, तो इसीलिए इट्स अ ग्रेट डेंजर फॉर द स्टेट। ऐसा अनैतिकता चलाने वाले जो धर्म है उसको हम चालू रखना ये बहुत बड़ा खतरा है हमारे लिए। अभी कुछ महीने पहले पोलैंड में भी ऐसा ही हुआ, एक जो हम पोलैंड में इंद्रदेव महाराज बहुत जोरों से प्रचार कर रहे हैं उसके कारण वहां पे जो क्रिश्चियन लोग हैं, पोलैंड जो है वो कैथोलिक क्रिश्चियन लोगों का देश है, तो वहां पे वो क्रिश्चियन लोग डर गए। तो वहां पे एक क्रिश्चियन नन थी, नन मतलब जो स्त्रियां होती जो विवाह नहीं करते हैं वो क्रिश्चियन धर्म के लिए स्वीकार करते हैं अपना जी समर्पित करते, तो उसने कोर्ट केस किया कि ये हरे कृष्ण वाले है ये एक अनैतिक भगवान की पूजा करने को बोल रहे हैं। उनका जो तथागत कृष्ण है उसने 16,000 स्त्रियों से विवाह किया है और स्त्रियों से उसने संबंध रखा है, तो ऐसे अनैतिक व्यक्ति की पूजा हमें नहीं करने देनी चाहिए हमारे महान राष्ट्र में, इसलिए उस पूजा को आप बंद कर दो। तो जब हमारे भक्तों को बुलाया गया तो हमारे भक्तों ने, भक्त बड़े बुद्धिमान होते हैं, तो उन्होंने बोला कि ठीक है ये जो नन है उनको बोलो कि उनका जो ननहुड, जैसे ब्रह्मचारी होते ब्रह्मचारी का व्रत देते तो व्रत लेते हैं, तो वैसे उनका ननहुड का जो व्रत है वो पढ़ो, तो वो पढ़ नहीं रहेगी। तो उन्होंने बोला मैं पढ़ता हूं, और वो व्रत में क्या था, क्या लिखा होता है कि मैं जीसस क्राइस्ट को मेरे पति के रूप में स्वीकार करके मेरा सारा जीवन उनके सेवा के लिए समर्पित करूं। भक्त ने कहा कि अभी सारे विश्व भर में तो करोड़ों के रूप में करोड़ों नंस है, करोड़ों सिस्टर्स है, तो अगर हम अनैतिक मानना है तो कृष्ण ज्यादा अनैतिक है या जीसस ज्यादा अनैतिक है?
तो फिर उन्होंने वो कोर्ट केस को डिसमिस कर दिया।
पर तभी 1860 में जब ये ऐसा कोर्ट केस आया तो ऐसे कोई बुद्धिमान भक्त थे नहीं, तभी जो अंग्रेज सरकार ने कृष्ण पूजा को गैर कानूनी मानकर बंद कर दिया, तो सारे मंदिर भारत में जबरदस्ती बंद हो गए थे, कृष्ण मंदिर 10 साल तक ये लागू रहा। महाराजा लाइवल केस था, वो बड़ा ही दुर्भाग्य की बात है। पर ऐसी परिस्थिति जब थी जब कि वैदिक धर्म को समझ नहीं रहा था, वैदिक धर्म को अनैतिक लोग मान रहे थे और वैदिक धर्म की निंदा कर रहे थे, तो सारे वैदिक धर्म की निंदा हो रही थी, सबसे ज्यादा कृष्ण की निंदा। तो ऐसी परिस्थिति में हमारे आचार्य आए, तो हम देख सकते हैं कि प्रभुपाद जी ने सारे विश्व भर में प्रचार किया। कोई सोच सकता है कि उसके विपरीत। एक बार एक भक्त ने प्रभुपाद जी को पूछा कि प्रभुपाद जी, भक्ति विनोद ठाकुर ने बंगाल में प्रचार किया, बंगाल में थोड़ा सा ओडिशा में, भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने सारे भारत में प्रचार किया और आपने सारे विश्व में प्रचार किया, तो आप उन सबसे बड़े हो। तो प्रभुपाद जी बड़े गंभीर हो गए, कभी ऐसे नहीं सोचना चाहिए प्रभुपाद जी कि मैंने जो कुछ भी किया है वो उनकी कृपा से किया है, उनकी शक्ति जो दी है उन्होंने उससे किया है मैंने। तो वास्तव में अगर हम देखते हैं कि कोई रंगमंच है, उसमें कोई नाच रहा है, तो एक व्यक्ति आके 15 मिनट नाचता है और दूसरा व्यक्ति आके 2 घंटे नाचता है, दूसरा व्यक्ति 2 घंटे नाच रहा है, बहुत अच्छा है, ये तो और निपुण कलाकार है। पर अगर पता चलता है हमें कि जो व्यक्ति 15 मिनट नाचा, उससे वो जो नाच रहा था उस रंगमंच पे पूरे कांच के टुकड़े भरे हुए थे, तो कांच के टुकड़े अगर भरे हुए हैं तो 15 मिनट नाचना भी बड़ा मुश्किल है। अभी उस तरह से भक्ति विनोद ठाकुर और भक्ति सिद्धांत ठाकुर जब प्रचार कर रहे थे तो वो एक कांच भरे हुए मंच है, उस पर नाचने के समान है। क्योंकि एक तो था कि जो क्रिश्चियन लोग हैं वो हिंदू धर्म की निंदा कर रहे थे, और उस समय बहुत से तथाकथित हिंदू नेता थे, वो सोचे कि हम क्या करेंगे, हम इसका प्रतिकार करेंगे, और हम प्रतिकार करने के लिए जो हिंदू धर्म का परिवर्तन कर देंगे। पर हिंदू धर्म का परिवर्तन करने के नाम पे बहुत से तभी राजा थे, तथागत आध्यात्मिक नेता थे, तो वो सब क्या कहते थे, वास्तव में ये जो मूर्ति की पूजा है या अलग अलग देवी देवताओं की पूजा है, ये सब हिंदू धर्म नहीं है, असली हिंदू धर्म क्या है वो उपनिषदों में बताया है, निर्विशेष निराकार ब्रह्म। और साथ साथ अभी भारत लोग जो थे, भारतीय लोग, वो स्वतंत्रता के लिए भी प्रयास कर रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि अगर हम स्वतंत्रता प्राप्त करनी है तो हमें भारतीय वासियों को, हिंदुओं को एकत्र करना चाहिए। एकत्र करना है तो कैसे करेंगे हम? हाँ, सब भारतवासी तो धर्म के स्तर पर एकत्रित हो सकते हैं क्योंकि सब धार्मिक है, हिंदू है सब, पर अगर हिंदू लोगों को एकत्रित करना है तो सब अलग अलग देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, हम उनको बताएंगे वास्तव में ये सब देवी देवता एक ब्रह्म के ही रूप है और असली जो आराध्य तत्व है वो ब्रह्मन है। राधा गोकुलानंद भगवान की, जगन्नाथ बल्ले सुभद्रामैया की जय, गौरीताय चंद्र भगवान की जय। तो हम उनको बताएंगे कि ये जो है निर्विशेष ब्रह्म वही आराध्य तत्व है और ये सब देवी देवता है जो उनकी मूर्ति है, उनके प्रति रीति रिवाज है, पुराणों में काल्पनिक कहानियां बताई है, ये सब जो है ये कुछ महत्वीय हिंदू धर्म नहीं है, वैदिक धर्म नहीं है। तो और ये जो इस तरह की विचारधारा थी वो भारतीय लोगों को तो अभी बहुत प्रेरित करेंगे, हाँ ये सत्य है, क्योंकि वो क्या समझते हैं कि ये क्रिश्चियन लोग हम पे बौद्धिक रूप पे आक्रमण कर रहे हैं, तो उससे कैसे बचना है, उससे कैसे प्रतिकार करना है, तो ये निर्विशेष निराकार ब्राह्मण है उसको हम स्वीकार करेंगे और उसका प्रचार करेंगे उसके बारे में, तो क्या होगा, हम उनको बता सकते हैं कि वास्तव तुम कहते हैं कि एक ही मार्ग है, क्रिश्चियन लोग कहते हैं कि जीसस इज द ओनली वे, नन शैल गो टू द फादर एक्सेप्ट थ्रू मी, आई एम द लाइट एंड द वे एंड द ट्रूथ। जीसस का जो एक कहा है कि मैं ही मार्ग हूं, मेरे अलावा कोई और भगवान के पास नहीं जाएगा। तो सभी के हिंदू लोगों ने सोचा कि क्या है, हम उनको कहेंगे कि ब्राह्मण एक ही है और सब मार्ग भगवान के पास जा सकते, ये तो मत तो पत कि आप जो भी बात करोगे उससे आप भगवान के पास जा सकते हो। तो प्रभुपाद जी को एक बार पूछा गया था, ये प्रभुपाद जी मुझे पता नहीं है कौन सा श्लोक है, पर मैंने सुना है कि भगवदगीता में कृष्ण ने कहा है कि आप जो भी करोगे आप मेरे पास आओगे, तो वास्तव में ऐसा कोई श्लोक नहीं है भगवदगीता में। तो जो चौथे अध्याय का 11वां श्लोक है, उसका गलत भाषांतर ये लोग करते हैं। प्रभुपाद जी इसका पहला भाग कोट करते थे हमेशा, और जो मायावादी लोग हैं दूसरा भाग कोट करते हैं। पहला भाग क्या है, ये था माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम, कि आप जिस प्रकार से मेरी शरण में आओगे मैं आपको उस तरह से पंडित होके आपको मेरा प्रसाद दूंगा। उसका दूसरा भाग है मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः, कि सब लोग मेरे मार्ग पर चल रहे हैं। अभी अगर हम संस्कृत के थोड़े व्याकरण को जानते हैं तो सर्वशः ये एक विशेषण है, और ये कौन से नाम को लगता है, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः, तो सर्वशः के पास में मनुष्य है, तो इसीलिए सब मनुष्य मेरे मार्ग पे है। और जो मायावादी लोग क्या करते हैं, सर्वशः जो विशेषण है वो वर्तमान मार्ग को लगा देते, सब मार्ग मेरे पास आते हैं। पर वास्तव में अगर हम भगवद्गीता के दूसरे विभाग देखते हैं तो स्पष्ट रूप में भगवान बोलते हैं 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में बोलते हैं, यान्ति देवव्रता देवान् पितृन् यान्ति पितृव्रता, कि आप देवों की पूजा करोगे देवों के पास जाओगे, भूतों की पूजा करोगे भूतों के पास जाओगे, मेरी पूजा करोगे मेरे पास आओगे, पितरों की पूजा करोगे पितरों के पास जाओगे। तो ये कोई कहीं बताया नहीं शास्त्रों की सर्वमार्ग एक ही गति में जाएगा। ये प्रभुपाद जी को पूछा गया, प्रभुपाद जी मुझे पता नहीं है पर कृष्ण ने कहा है भगवद्गीता में कि आप जो भी करोगे मेरे पास आओ। तो प्रभुपाद जी ने बहुत ही सरल और जबरदस्त जवाब दिया, प्रभुपाद जी बोले अगर आप जो भी करेंगे आप भगवान के पास जाओगे तो फिर भगवान को भगवद्गीता बोलने की जरूरत ही क्या है, जो भी करने वाला है उससे अगर आप भगवान के पास जाने वाले, पर भगवान ने बताया कि आप ये करो ये मत करो। तो ये इस प्रकार की विचारधारा थी, तभी बहुत प्रचलित हो गई थी भारत में। और ऐसे परिस्थिति में ये लोग सोचते थे कृष्ण भक्ति अगर कोई कर रहा है तो वो एक संकीर्णवाद है, हम सब देवों को मानते हैं, आप इतने संकीर्णवादी क्यों, सिर्फ कृष्ण भक्ति क्यों करते हैं। पर वास्तव में संकीर्णवादी नहीं है हम, शास्त्रवादी है। शास्त्रों में बताया सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, तो सर्वधर्म क्यों बताया, क्योंकि अलग अलग देवी देवताओं का पूजा करना भी एक धर्म है, पर सर्वश्रेष्ठ धर्म है वो कृष्ण भक्ति, वेदैश्च सर्वै अहमेव वेद्य। तो ऐसी परिस्थिति में जो मतलब क्रिश्चियन लोग और भारतीय लोग दोनों कृष्ण भक्ति के प्रति बहुत निंदक थे, और साथ साथ जो तथाकथित कृष्ण भक्त थे वे भी बहुत सारा गलत कार्य कर रहे थे। यहां तक कि श्री भक्तिविनोद ठाकुर उनके जो उन्होंने हमारे संप्रदाय जो शिक्षा संप्रदाय है, तो उनके जो दीक्षित गुरु दीक्षा देने वाले गुरु थे भक्तिविनोद ठाकुर थे, वे थे बिपिन बिहारी गोस्वामी, और उनके प्रेरणा जो शिक्षा जिसे मिली वो थे जगन्नाथ दास बाबा जी। जो बिपिन बिहारी गोस्वामी थे वे गोस्वामी थे, भक्तिविनोद ठाकुर उनका आदर करते थे, पर फिर भी वे तंबाकू खाते थे चाय पीते थे, यहां तक कि वे आचार्य थे कभी। तो इसीलिए हमारे गुरु परंपरा में भक्तिविनोद ठाकुर ने बताया कि जो शिक्षा उनको प्रेरणा मिली है वो उनसे मिली। तो ये तो बहुत छोटी सी बात, पर जो तथाकथित कृष्ण भक्त थे वो भी बहुत गलत कार्य कर रहे थे। तो इस तरह से बाहर से लोग निंदा कर रहे हैं कृष्ण भक्ति की, और अंदर से जो तथाकथित कृष्ण भक्त है वो भी बहुत सारे गलत कार्य कर रहे हैं। तो ऐसे परिस्थिति में कृष्ण भक्ति का प्रचार करना बड़ा मुश्किल है। मान लीजिए हम लोगों को कहते हैं कि आप मंदिर में आओ, मंदिर में आके भक्ति करो, और कोई व्यक्ति मंदिर में आता है मंदिर में देखता है कि बहुत से गलत कार्य चल रहे हैं, तो लोगों को क्या प्रेरणा मिलेगी भक्ति करने की। तो ऐसी परिस्थिति में भक्ति सिद्धांत ठाकुर को प्रचार करना था। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर जो थे वे भक्तिविनोद ठाकुर ने अपने जीवन भर बहुत प्रचार किया, पर उन्होंने देखा कि इतना विशाल कार्य है कि मैं उसको अकेला पूरा नहीं कर सकता। तो इसलिए उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु आपके तो आपका एक किरण मुझे भेजो, ताकि वो किरण जो है वो सारे धर्म का है प्रचार करेगा। वो तो उनकी प्रार्थना के अनुसार भक्ति सिद्धांत ठाकुर जो बिमल प्रसाद उनका जन्म हुआ, और जब उनका जन्म हुआ तो उनका जो अम्बिलिकल कॉर्ड होता है जो माँ और उनके शिशु के बीच में होता है, व्हाट डू कॉल अम्बिलिकल कॉर्ड इन हिंदी, जो पेशी का जो धागा जैसे होता है जिससे कि जो अन्य बालक को पोषण मिलता है, वो जब जन्म हुए तो वो जनेवे के समान उनके सारे शरीर में आवृत था। और जब जगन्नाथ जी का रथ यात्रा जा रहा था वहां से सामने से, तभी उनकी जो माँ थी भक्तिविनोद ठाकुर की, वो अपने बालक को ले गई, और वो रथ उनके घर के सामने ही रुक गया। जब रथ रुक गया तो उन्होंने जाकर चरण कमलों में रख दिया उस बालक को, और जैसे चरण कमलों में रखा जगन्नाथ जी के, तो जगन्नाथ जी के गले से एक माला गिर गई और बराबर उस बालक के गले में गिर गई। और जब भक्ति विनोद ठाकुर ने सुना तो समझ गए ये जो पुत्र है, ये जो व्यक्ति पुत्र है, यही भगवान का किरण है, भगवान ने मेरी प्रार्थना पूरी की। और फिर उसके बाद में बचपन से ही वे बहुत ही बुद्धिमान थे, यहां तक कि वे पाठशाला में आ जाते थे, पाठशाला में इतना पढ़ाई करते थे उससे ही बहुत अच्छे अंक प्राप्त कर लेते थे, और घर में आके सिर्फ अपने पिताजी ने ग्रंथ लिखे हैं वही पढ़ते थे। भक्तिनाथ ठाकुर ने लगभग 100 से अधिक ग्रंथ लिखे थे और इस तरह से उन्होंने बहुत दिव्य ज्ञान प्राप्त कर लिया। जहां तक कि जब 7 साल के थे तब से वे तब सारी भगवदगीता कंठस्थ कर ली। 8 साल के थे तब वह भगवदगीता में प्रवचन देने लग गए, तो तभी उनके पिताजी अगर नहीं आप इतने प्रवचन देने लगे तो छोटे 8 साल के वो प्रवचन देते। और फिर और बचपन से इतने तीक्ष्ण बुद्धि के थे, न केवल स्मरण शक्ति के बारे में पर जो विवेक बुद्धि है क्या सही है क्या गलत है वो समझने के लिए। तो एक बार उनके पिताजी कुछ वैष्णव से मिलने गए थे तो फिर उन्होंने देखा तो उन्होंने छोटा बच्चा होता है तो साधारण जो होते हैं माता पिता अगर कोई सन्यासी मिलने आया है तो उनको बेटा इसको प्रमाण प्रणाम करो आप, वो सन्यासी आशीर्वाद देते हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर के छोटा बेटा था विमल प्रसाद भक्ति विनोद ठाकुर का, तो वो सन्यासी नहीं थे वो तथागत वैष्णव थे। तो ये बोले ये मुझे प्रणाम क्यों नहीं कर रहा है, तो भक्ति विनोद ठाकुर ने उनको देखा और हम चले गए। भक्ति विनोद ठाकुर ने बोला कि वो सहजिया वो प्रणाम नहीं करता है तो छोटा बालक था उसको ये विवेक बुद्धि समझने के लिए क्या असली भक्ति है क्या असली भक्ति नहीं है। और फिर उनको वो जब गौर किशोर बाबा जी से मिले तो वो इतने प्रवीण थे इतने बुद्धिमान थे भक्ति विनोद ठाकुर कि वे बड़े बड़े वाद विवादों में वो जब पहले वो एस्ट्रोलॉजी जो ज्योतिष शास्त्र सीख रहे थे, ज्योतिष शास्त्र का एक बहुत बड़ा पंडित था उसने कुछ गलत गलती कर रही थी तो उसके धारणा है उसको सब गलत उन्होंने साबित कर दिया, वाद विवाद में उसको भी हरा दिया, तो उसके कारण उसके शिष्य को हरा दिया कि वो बुढ़ा हो गया था तभी। तो ये जो वाद विवाद जब हुआ तब भक्ति विनोद ठाकुर ने इस तरह से तर्क वितर्क किए जो दूसरे पक्ष का था, ये सब ज्योतिष शास्त्र में भौतिक ज्ञान के बारे में बात कर रहे थे, ऑफकोर्स ज्योतिष वैदिक शास्त्रों का एक अंग है ज्योतिष ज्ञान पर वो भौतिक है वो आध्यात्मिक नहीं है। तो इस तरह तर्क वितर्क हुआ कि जो दूसरा पक्ष का व्यक्ति था वो डर के हार गया और उसकी इतनी बेइज्जती हो गई, तो उसका जो शिक्षक था वो भी बूढ़ा हो गया था वो बोल नहीं पा रहा था वो उसका पूरा बेइज्जती हो गया और उसने वहीं पे ऐसे बताया गया है कि बेइज्जती होने के कारण वहीं पे उसने ऑडियंस में बैठा था वहीं पे वो जो शिक्षक था उसके नीचे उसका शिष्य था वो वाद विवाद कर रहा था, अपने शिष्य को हारते हुए देखकर वह बड़ा बेइज्जती हो गई उसकी और फिर उसने बेइज्जती के कारण रोने लग गया वहां पे वो और उसने अपने उसके कपड़े गंदे हो गए उसके बेइज्जती के कारण। पर उसके बाद में भक्ति विनोद ठाकुर ने सोचा कि ये भौतिक ज्ञान है यह वेदों शास्त्रों की सबसे बड़ी देन नहीं है, वो है आध्यात्मिक ज्ञान, इसलिए वो आध्यात्मिक ज्ञान की ओर और आकर्षित हो गए। वो पहले से आकर्षित थे, वो भगवान के पार्षद हैं पर उन्होंने वो प्रकट किया और फिर उन्होंने तब से वो जो वाद विवाद के बाद भले ही तभी वो बहुत वो विजयी हो गए और उनको तभी उनको बताया गया कि आप अपनी ग्रेजुएशन पूरा कर लो हम आपको कलकत्ता यूनिवर्सिटी में जो ज्योतिष का डिपार्टमेंट चालू कर दे आप उसको प्रोफेसर बना देंगे और हम आपको उसके बाद में उसका हेड ऑफ डिपार्टमेंट बना देंगे। तो ये बहुत ही अद्वितीय है, कोई विद्यार्थी है पढ़ाई कर रहा है और उसको बोले कि हम आपको डिपार्टमेंट का हेड बना देंगे, बहुत कम बार ऐसे होता है कभी, तो क्योंकि वो इतना पांडित्य था पर उन्होंने उसको त्याग कर दिया और सोचा कि अगर मैं उन्होंने केवल उन्होंने वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट के पद को त्याग कर दिया पर उन्होंने अपने शिक्षण को ही त्याग कर दिया, उन्होंने सोचा कि मैं शिक्षण पूरा करूंगा सारे समाज के लोग हैं वो उस पर जोर डालेंगे कि अभी आपको विवाह करना चाहिए गृहस्थ आश्रम में आना चाहिए पर अगर मेरा तथागत शिक्षण ही पूरा नहीं हुआ है डिग्री नहीं है तो फिर कोई उस पर दबाव नहीं डालेगा क्योंकि कोई कोई व्यक्ति कोई पिता अपनी बेटी देना नहीं चाहेगा, इसीलिए वो सोचकर उन्होंने अपना जो डिग्री उन्होंने पढ़ाई पूरी की थी पढ़ाई में निपुण थे पर उन्होंने डिग्री प्राप्त नहीं की और फिर वो प्रचार में लग गए। अब प्रचार में जब लग गए वे तो पहले तो वो भक्तिविनोद ठाकुर को मदद करते थे प्रचार में, पर उसके बाद में जब वे और प्रचार करने लग गए स्वयं से, तो 1914 में भक्तिविनोद ठाकुर ने अपना शरीर त्याग दिया। 1916 में भक्ति गौर विशेष बाबा ने अपना शरीर त्याग दिया, तो सारा प्रचार जो था थम गया। और तभी भक्तिविनोद ठाकुर भी स्वयं थोड़े खिन्न हो गए, मैं अकेला कैसे प्रचार करूंगा। तो तभी उनके गुरुदेव गौर विशेष बाबा जी, भक्तिविनोद ठाकुर, चैतन्य महाप्रभु, पंचतत्व, सब उनको एक दिव्य दृष्टि में प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि तुम से प्रयास करो, हम सारी योजना कर देंगे। फिर उसके बाद में उनको इसे प्रेरणा मिली, बहुत सा प्रचार चालू कर दिया उन्होंने। पर अभी भक्तिविनोद ठाकुर जो थे वो तो गृहस्थ थे, और भक्तिविनोद ठाकुर जो कृष्ण भक्ति का प्रचार कैसे कर पाए, क्योंकि वे मैजिस्ट्रेट थे, वे जज न्यायाधीश जैसे थे, और क्योंकि न्यायाधीश का पद बहुत आदरणीय था वो अंग्रेज सरकार के दृष्टि में भी और भारतीयों की दृष्टि में, तो उनका जो आदरणीय पद था उस पद का उपयोग करके उन्होंने प्रचार चालू कर दिया। और जब लोगों ने देखा कि अरे इतना बड़े पद वाला व्यक्ति है, इतना बुद्धिमान व्यक्ति है, वो कृष्ण भक्ति के बारे में बोल रहा है, तो उसे लोग सुनने लगे। पर वो मार्ग तो भक्ति सांसद ठाकुर के पास था नहीं, क्योंकि वो तो अभी शिक्षण बंद कर दिया था, वो उस मार्ग में जाना नहीं चाहते थे। और फिर उस समय उन्होंने सोचा कि मुझे संन्यास लेना चाहिए। तो पहले तो संन्यास जो था उसके बारे में बहुत से भ्रांत धारणाएं थी, ये सन्यासी लोग गलत कार्य करते हैं। पर वो जो कार्य थे, वो जो सन्यासी, वो बाबाजी लोग जो थे ऐसे करते थे बहुत सारे। तो जो गौड़िया वैष्णव धर्म था उसमें बहुत से बाबाजी लोग होते थे, बाबाजी लोग होते जैसे चैतन्य महापुरुष स्वयं संन्यास लिया और जो भगवे वस्त्र पहने। पर जो कुस्वामी है उन्होंने संन्यास नहीं लिया, उन्होंने बाबाजी वेश धारण किया और सफेद वस्त्र पहने। तो उसके कारण हमारे संप्रदाय में जो भौतिक जगत को त्याग करके भगवत भक्ति में समर्पण करना चाहते थे वे सफेद वस्त्र पहना करते थे, बाबाजी वेश धारण करते थे। तो भक्ति सांस राहुल ये कर सकते थे, पर अगर वो बाबाजी वेश धारण करते थे तो पहले से जो बाबाजी लोग थे बहुत से गलत कार्य करते थे गौड़िया वैष्णव तत्व के नाम पे, इसीलिए वो सब भ्रांत धारणाएं उनके पास आते थे। और क्योंकि सभी कुछ मायावादी संस्थाएं थे वो लोगों को सन्यासी बना रहे थे, और वे सन्यासी लोगों को मनाकर क्योंकि तभी जो हिंदू धर्म और राष्ट्रवाद का जो गर्व था, अभिमान था, वो जागरूक हो रहा था, इसीलिए वो जो धर्म के वो जो मायावादी संस्था के सन्यासी थे वे अच्छा कार्य कर रहे थे, थोड़ा समाज सुधार कर रहे थे, प्रचार कर रहे थे, मायावाद का प्रचार कर रहे थे। पर उससे जो सन्यास आश्रम था उसके प्रति लोगों के मन में आदर पुनः जागृत हो गया था, इसीलिए भक्ति सांसद ठाकुर ने सोचा कि संन्यास लेना चाहिए। पर अगर उनको संन्यास लेना है तो किससे संन्यास लेंगे वो? तो गौड़ीय संप्रदाय में तो कोई संन्यास देने वाला था नहीं, क्योंकि संन्यास था ही नहीं उस समय। तो जो दक्षिण भारत में भक्ति सांसद ठाकुर गए थे तो उन्होंने जगन्नाथपुरी में थे, तभी उन्होंने जो मायावादी है उनके ग्रंथों का बहुत अध्ययन किया, और यहां तक वो जो शंकराचार्य है उन्होंने 4 फीट स्थापन किए थे 4 धामों में, 4 भारत के कोनों में, तो रामेश्वर, बद्रीनाथ, द्वारका और जगन्नाथपुरी, और आपको उसका हेडक्वार्टर कांचीपुरम में था प्रधान क्षेत्र। तो जगन्नाथपुरी में गोवर्धन मठ है, तो वहां पे घंटे घंटे भक्ति सांसद ठाकुर बैठ के वहां मायावादी से चर्चा करते थे, उनके ग्रंथों को पढ़ते थे, और मायावादियों को लग रहा था कि वास्तव में ये हमारे तत्वज्ञान से बहुत प्रभावित हो रहे हैं और अभी ये मायावादी बनने वाले हैं। तो कुछ वैष्णव उनको आके बोलने लगे कि इतना मायावादी को आपको संग नहीं करना चाहिए, आप प्रभावित हो जाएंगे। पर भक्ति सांसद ठाकुर का बड़ा योजना था, क्या था, सारे मायावादियों के ग्रंथ पढ़ के उन्होंने उनका सारे तत्वज्ञान था, वास्तव में तत्वज्ञान नहीं था, तत्व अज्ञान है वो, पर जो भी है वो पूरा समझ लिया। और बाद में जब वो प्रचार करने लग गए तो जो मायावादी जो भी तर्क वितर्क बोलने वाले उनको पहले से पता थे और उसका खंडन भी पता था, तो उसके कारण कोई मायावादी भक्ति सांसद ठाकुर के सामने आया नहीं करते, डर जाते थे वे। यहां तक कि कोई मायावादी रास्ते से जा रहा है, भक्ति सांसद ठाकुर आज देखे तो रास्ता बदल के चले जाते थे। तो उनका योजना था कि सारा जो शास्त्रों का अध्ययन, उनके तथाकथित तर्कों का अध्ययन करके उनका खंडन करना। तो तभी बाद में उन्होंने जो श्री वैष्णव है, माधव वैष्णव है, उनका भी अध्ययन किया। तो उन्होंने वो जो दूसरे वैष्णव गौड़िया संप्रदाय में तो संन्यास लेने का कोई मौका था नहीं, तो संन्यास कौन दे रहे थे, तो मायावादी लोग संन्यास दे रहे थे, और श्री और माधव संप्रदाय में कुछ संन्यास आश्रम था, अधिकांश लोग संन्यास नहीं थे पर संन्यास आश्रम था वहां पर। अभी तक माधव माधव आश्रम में माधव संप्रदाय में कैसे है कि वे सिर्फ जो ब्राह्मण जिन्होंने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है उनको ही संन्यास देते हैं। तो इसीलिए भक्तानंद ठाकुर कहते थे कि वो तो मुझे संन्यास लेंगे नहीं, और ये तो स्वाभाविक है कि वे मायावादी से जाके संन्यास लेंगे नहीं, तो फिर उनको पर्याय नहीं रहता। उन्होंने क्या है क्रांतिकारी कार्य कर दिया। क्या क्रांतिकारी कार्य कर दिया उन्होंने? स्वयं ही भक्तानंद ठाकुर के चित्र के सामने बैठ गए और खुद को संन्यास दे दिया उन्होंने। तो ये अद्वितीय है। तो उनको कुछ उनको जो मिलने भक्त आते थे वो ये सब मायापुर में हुआ। मायापुर में मायापुर उस समय कुछ भी नहीं था, एक जंगल के समान था। भक्ति विनोद ठाकुर ने 1896 में जो योगपीठ है उसको पुनः संशोधन कर लिया था उन्होंने, पर वो जंगल की जैसी जगह थी और वहां पे कोई भी आ नहीं रहा था। और भक्ति विनोद ठाकुर को बड़ी ग्लानी हो रही थी कि वो भले ही किसी व्यक्ति को तनख्वाह देकर वहां पे रहने को बोले तो भी रहने को तैयार नहीं था। तो भक्तिवंत ठाकुर बोले मैं वहां पे रहूंगा। तो वहां पे वो रह रहे थे और 1919 में वो उनसे कुछ मिलने भक्त आते थे और एक दिन उन्होंने देखा कि वो आए और ये सफेद वस्त्र पहनने की जगह भगवे वस्त्र पहने हुए। तो बड़ा आश्चर्य हो गया और उन्होंने बताया कि मैंने संन्यास लिया है। जब उन्होंने संन्यास लिया तो बहुत से लोग उनकी निंदा करने लगते हैं, कैसे कैसे स्वयं को कैसे आप संन्यास दे सकते हैं। तो भक्तिवंत ठाकुर एक वैष्णव नम्र होता है, पर उसकी नम्रता मतलब का मतलब ये नहीं है कि वे प्रचार करने में डरपोक होता है। जो सिद्धांत है प्रस्थापित करने में वो सिंह के समान निर्भय होता है, आक्रामक होता है। जब तुथागत गौड़ी वैष्णव ने उनको दंडा की, वास्तव में जब पहले भी जब उनको दीक्षा लेनी थी तो वहां पर जो तथागत गौड़ी वैष्णव थे वे सब अपने आप में स्पर्धा कर रहे थे कि मुझे ये व्यक्ति मेरा शिष्य के रूप में चाहिए, क्योंकि अगर इतना विद्वान व्यक्ति मेरा शिष्य बन जाएगा तो फिर मेरा आदर बढ़ जाएगा। तो भक्तिवंत ठाकुर किसी से दीक्षा जाके गौर किशोरदास बाबा जी दीक्षा ली, तो फिर देखा कि वास्तव में पूरी तरह से विरक्त है, कोई भी भौतिक आसक्ति नहीं है उनमें। तो उन्होंने ज्ञान नहीं देखा, गौर किशोर बाबा जी थे वास्तव में पढ़े लिखे नहीं थे, लिख नहीं पाते थे वो ज्ञान तो बहुत था पर लिख नहीं पाते थे। पर और भक्तिवंत ठाकुर बड़े निपुण थे, पंडित थे, पर फिर भी उन्होंने गौर किशोर बाबा जी क्यों दीक्षा ली, क्योंकि देखा कि उनमें भक्ति और वैराग्य है। तो पर अभी भक्ति गौर किशोर बाबा जी तो शरीर से आग गया था उन्होंने, तो इसीलिए उनके पास कोई पर्याय नहीं था। तो उन्होंने स्वयं को संन्यास दे दिया। जब स्वयं को संन्यास दे दिया उन्होंने तो उनकी निंदा होने लग गई, आप ऐसे कैसे स्वयं को संन्यास दे सकते हो। उन्होंने बड़े स्पष्ट रूप से कहा कि आप में से कोई पात्र नहीं मुझे संन्यास देने के, नो वन वॉज क्वालिफाइड टू गिव मी संन्यास, सो आई टुक संन्यास माय सेल्फ। तो ये उनका निर्भय भाव था, पर यह अहंकार नहीं है, दूसरों का वो निंदा नहीं कर रहे, पर वास्तव में भक्ति का प्रचार करने वाले कोई आदर्श व्यक्ति था ही नहीं उस समय। और फिर वे उन्होंने तो भक्तिवंत ठाकुर ने कई तो ये सब उनके जीवन की पार्श्वभूमि हो गई। तभी उनका जो प्रचार उन्होंने किया, प्रचार करने समय बहुत से अद्वितीय कार्य किए। सबसे पहला जो कार्य किया वो उन्होंने एक संस्था की स्थापना की। भक्तिवंत ठाकुर ने बहुत प्रचार किया, नामहट्ट उन्होंने बहुत से बनाए, पर उन्होंने एक संस्था नहीं बनाई। और कोई आश्रम, क्योंकि वो स्वयं गृहस्थ थे तो कोई ऐसे आश्रम बनाकर भक्तों को वहां पर रखना रहना और मंदिर को चलाना बड़ा मुश्किल था उनके लिए। पर भक्तिवंत ठाकुर ने न केवल संस्था बनाई पर मायापुर से सीधा कलकत्ता में आ गए। कलकत्ता का साधारण रूप से जो सन्यासी लोग होते हैं, वैरागी लोग रहते हैं, वो शहरों में नहीं रहते। पर भक्तिवंत ठाकुर ने विचार किया कि हमें प्रचार करना है तो जो सुशिक्षित लोग हैं, स्वयं को तथाकथित बुद्धिमान मानते हैं, वो सब मायापुर में मुझसे मिलने नहीं आएंगे, मुझे कलकत्ता में जाना चाहिए। तो कलकत्ता में जाके उन्होंने गौड़िया मठ की स्थापना की और गौड़िया मठ का प्रचार उनकी जो विद्वत्ता थी, उनकी जो प्रावीण्य था शास्त्रों में, वो इतना विशाल था कि एक बार कलकत्ता यूनिवर्सिटी से एक 6 प्रोफेसर उनसे मिलने आ गए। और ये कलकत्ता यूनिवर्सिटी में कैसे होता है, वो जो प्रोफेसर होते थे वो सबको वो कंपलसरी बाइबल क्लासेस सुनने पड़ते थे। जब प्रभुपाद जी भी जब स्कॉटिश चर्च कॉलेज में थे तो उनको भी बाइबल क्लासेस सुनने पड़ते थे, और वो बाइबल क्लास में सिर्फ क्रिश्चियनिटी के बारे में नहीं बताते थे, हिंदू धर्म की निंदा भी करते थे। ये सब प्रोफेसर थे, वो ऐसे ही प्रकार के थे जो हिंदू धर्म की निंदा करने वाले थे। और वे भक्तराम से ठाकुर के पास आए और वे बोले कि हम आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। तो भक्तराम ठाकुर ने बोला कि आप जो भी सवाल पूछेंगे मैं उनका जवाब देने का तैयार हूं, पर उसके पहले आप डेढ़ घंटा मेरा प्रवचन सुनना चाहिए बिना कोई सवाल पूछे, चुपचाप आप प्रवचन सुनो, उसके बाद में जो भी सवाल पूछना है आप सवाल पूछ सकते हैं। तो बोले ठीक है। और भक्तराम ठाकुर इतने बुद्धिमान थे कि उन्होंने अलग अलग शास्त्रों से कोट करके पहले ही वो जो भी सवाल पूछने वाले हैं वो सब सवालों के जवाब अपने प्रवचन में पहले दे दिए। और डेढ़ घंटा हो गया, दो घंटा हो गया, किसी को सवाल पूछा नहीं। तो दो घंटे के बाद में भक्तराम ठाकुर ने अपना प्रवचन को विराम दिया। कोई सवाल है? वो सब सिंह के समान आए थे, बिल्ली के समान पालतू बन के चले गए।
तो
इस तरह से जो भक्तराम ठाकुर बड़े दिव्य स्तर से शक्ति से प्रभाव से विचार करने लग गए। और क्यों, क्या है, भारत में संस्कृति पहले से है, पर संस्कृति के जो भारत में संस्कृति है, भारतवासियों में श्रद्धा भी है। प्रभुपाद जी एक प्रवचन में कहते हैं कि स्पिरिचुअल सब्सटेंस फ्लोज इन द बॉडी ऑफ इंडियंस, कि जो दिव्य तत्व है वो भारतवासियों के रोमों में, शरीर में बहता है, रक्त नहीं बहता है, दिव्य तत्व बहता है। क्यों? क्योंकि हम भागवतम का पांचवा स्कंध पढ़ते हैं, तो जम्बुद्वीपवासी प्रार्थना करते हैं कि हमें भारतवर्ष में जन्म दो, क्योंकि इस देश में जन्म अगर होता है किसी का तो उसका मतलब है कि उसको पहले से बहुत भक्ति और पुण्य है जिससे कि जन्म हुआ है। तो इसी कारण अगर लोगों को कोई आदर्श उदाहरण मिल जाते हैं, लोगों को अगर भक्ति लेनी है तो उनको दो चीजें चाहिए। क्या चाहिए? एक आदर्श उदाहरण चाहिए, और वो आदर्श उदाहरण थोड़ा बहुत तत्वज्ञान बताकर अच्छी संस्कृति प्रदान करना चाहिए, कल्चर और फिलोसॉफी एग्जाम्पल, ये तीन चीजें चाहिए लोगों को। ये मिल गया तो लोग भारत में बड़े आसानी से विचार करने लगे, भक्ति स्वीकार करते हैं। जैसे कोई लकड़ी है वो अगर गीली है तो उसको जलाना बहुत मुश्किल है, वो सूखी है तो जलाना आसान है। तो जो उसी तरह से जो भारतवासी है अगर वो पाश्चात्यकरण से प्रभावित नहीं हुए, भौतिकवाद से प्रभावित नहीं हुए ज्यादा, तो फिर वो सूखी लकड़ी के समान है, और प्रभावित हुए भी है तो भी गीली लकड़ी के समान। तो उनको बहुत आसानी से भक्ति मिला सकते हैं, पर कोई उदाहरण नहीं है। और प्रभाव परिणाम क्या है और समस्या क्या है कि बहुत से गलत मार्ग है, तथाकथित आध्यात्मिक मार्ग है, वो उनको गुमराह कर देते हैं। और उसके बाद में क्या होता है, वो एक गलत मार्ग में चले गए तो सोचते कि हम भी भक्ति कर रहे हैं, हम भी आध्यात्मिक है, हमें आपके मार्ग में आने की क्या जरूरत है। तो उसके कारण प्रचार करना बहुत जरूरी है। और भक्तराम ठाकुर ने प्रचार जब शुरू कर दिया तो इतना सुंदर प्रवचन देते थे, इतना आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करते थे, और तो गौड़ीय मार्ग इस तरह से तेजी से फैलने लग गया। 1919 में उन्होंने संन्यास लिया और 10-12 साल में सारे भारत में जो गौड़ीय मठ के केंद्र हो गए, अनेक शिष्य थे उनके, बहुत बहुत बुद्धिमान लोग जो थे उनके उनके पास आकर उनके शिष्य बन गए, और ऐसा उन्होंने बहुत से लोगों ने संन्यास लिया और वे सब भारत में आकर प्रचार करने लगे। तो उनका प्रचार का प्रभाव इतना हुआ कि उस समय मायापुर जो था, मायापुर बिल्कुल डेवलप हुआ नहीं था, मायापुर में जाना भी बड़ा मुश्किल था। तो सरकार, तो इतने लोग वहां पे आने लग गए भक्ति करने के लिए मायापुर में, कि जो भक्तराम ठाकुर का जो गौड़ीय मठ था, उन्होंने गौड़ीय मठ के भक्तों को बोला कि आप बोटमन बन जाओ, कि अगर भक्तों को लेके जाना है तो बोट चाहिए वहां पे। और वहां पे ज्यादा लोग थे तो फिर वो बहुत से लोग बोट में बैठे थे, और बोट में बैठे गए तो क्या, अब बोट में जाते पैसा देना चाहिए आपको। तो बोले पैसा देने की जरूरत नहीं है, अब क्या कर रहे थे, जितना समय बोट में है तो आपको हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे थे। तो इस तरह से वे खुद योजना करते थे कि आप यहां से गंगा के तट जाके जो योगपीठ है और उनका जो आश्रम भक्तराम ठाकुर का गौड़िया मठ, वहां पे आप आ सकते हैं। और फिर इतना ही नहीं, वहां इतने सारे लोग आते हुए देखकर सरकार ने वहां पे खुद एक रास्ता बना दिया, बड़ा रास्ता बना दिया, तो उसका नाम था भक्त सिद्धांत रोड, वो इतने प्रसिद्ध हो गए तभी। और फिर उस वो बड़ा दूर की जगह थी तो भक्तराम ठाकुर इतने सारे खत आते थे और खत का जवाब लिखते थे, तो इतना सारा पत्र व्यवहार बढ़ गया। तो अंग्रेज सरकार थी उस समय, पर उन्होंने बोला कि हाँ इतना सारा पत्र व्यवहार यहाँ पे हो रहा है, हम यहाँ पे एक पोस्ट ऑफिस बना देंगे। तो अब उस तरह से छोटे से जगह में पोस्ट ऑफिस बनाना मतलब, और वो क्यों बना था, वहां के गांव के लोग तो कोई थे नहीं इतना पत्र व्यवहार करने वाले, भक्तराम ठाकुर के लिए बनाए थे वो। तो क्या हो रहा था, उनके लिए तीन दिनों में, हर तीन दिन में
एक बैलगाड़ी भर के खताया करते थे।
तो फिर सरकार बोली आप बैलगाड़ी से खतलाने से बेहतर है कि हमको ज्यादा खर्चा हो रहा है, हम आपके लिए एक पोस्ट ऑफिस बना देंगे।
तो इस तरह से मायापुर धाम का विकास होने लगा। तो सरकार ने तभी कहा कि हम कलकत्ता से एक डायरेक्ट रोड बना देंगे मायापुर तक। तो अभी तक वो रोड है नहीं। तो भक्तानंद ठाकुर ने बोला कि नहीं, जरूरत नहीं है। वो बोले कि प्राचीन काल में जैसे हम देखते हैं, अगर हम तिरुपति बालाजी जाएंगे तो जो वहां पे मंदिर है वो आपको चढ़ के जाना पड़ता है, ऊपर थोड़ी मेहनत करनी पड़ती, तपस्या करनी पड़ती है। तो वो बोले कि अगर उनको चैतन्य महाप्रभु के धाम का दर्शन करना है तो थोड़ी तपस्या करनी चाहिए। आप डायरेक्ट रोड बनाएंगे तो बहुत से भौतिक वाले लोग आ जाएंगे, और वो कभी कभी बहुत स्पष्ट हुआ करते हैं, बोले वी डोंट वॉन्ट मटेरियलिस्टिक पीपल टू कम टू मायापुर टू पास टूल, कि वो यहाँ पे आएंगे और अपना भौतिकवादी कार्य करते रहेंगे, तो उसके लिए हम नहीं चाहते कि मायापुर लोग हैं। तो बोले कि हमको डायरेक्ट रोड नहीं चाहिए। पर उस समय वो मायापुर में उन्होंने इतना विकास कर लिया और इतने सारे भक्ताएं लग गए कि जो भारत के तभी वाइसरॉय थे, जैसे अभी भारत के प्रधानमंत्री है, तो उस समय अंग्रेज सरकार के जो प्रधान अध्यक्ष थे वाइसरॉय कहते थे कि वो वहां पे आ गए मायापुर में। तो अभी हमारा अभी इस्कॉन भी इतना बड़ा हो गया है, और अभी अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण महामंदिर संघ जो है उसका अंतर्राष्ट्रीय जो हेडक्वार्टर्स है, प्रमुख स्थान है, वो मायापुर है। पर अभी तक जो मायापुर में भारत के प्रधानमंत्री या भारत के राष्ट्रपति नहीं आए, पर उस समय भक्तिदान श्रीराहुल का प्रभाव इतना हो गया था कि भारत के जो वाइसरॉय थे वो वहां पे आ गए, और वहां पे आ गए, और जब वहां पे आ गए वे तो उन्होंने सब मायापुर को देखा, बहुत सराहना की उन्होंने। और भक्तिदान श्रीराहुल बड़े बुद्धिमान थे, वो जो प्रचार करते थे तो उन्होंने ऐसे बताया कि वास्तव में हमें स्वतंत्रता की कोई जरूरत नहीं है। स्वतंत्रता की जरूरत क्यों नहीं है? भक्तिनाथ ठाकुर जब थे उसी समय बहुत से लोगों में राष्ट्रवादी विचारधाराएं आने लग गई। पर हम जानते हैं कि भक्ति सुधांशु ठाकुर ने भी प्रभुवाद जी से कहा कि आप कृष्ण भावना का प्रचार करना जरूरी है, ये स्वतंत्रता की कोई जरूरत नहीं है वास्तव में, हमें ये भौतिक चीज है। तो भक्तिनाथ ठाकुर ने एक उदाहरण दिया था कि क्या उदाहरण दिया था कि मान लीजिए दो भाई है, एक बड़ा भाई है छोटा भाई है। जो बड़ा भाई है वो वास्तव में अभी उसने धंधा वगैरह कर लिया है और अभी वो रिटायर होना चाहता है और वो आध्यात्मिक कार्यों में लगना चाहता है। तो फिर वो क्या करता है, अपनी जायदाद है अपने छोटे भाई को दे देता है, और छोटे भाई को बोलता है कि आप जायदाद संभालो और मैं आध्यात्मिक कार्यों में लग जाऊंगा। तो भक्तिनाथ ठाकुर बोला करते थे कि वास्तव में जो भारतवासी है वो बड़े भाई के समान है, जो अंग्रेज है वो छोटे भाई के समान है। तो जो भारत का मैनेजमेंट है उनको संभालने दो, हम भारतवासी क्या है, हम आध्यात्मिक ज्ञान अनुसंधान करेंगे और आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार करेंगे। तो भारत के जो तभी स्वतंत्रता प्राप्त कर के संघर्ष करने वाले लोग थे वो बड़े क्रोधित हो गए भक्तिनाथ ठाकुर से सुन के। पर वास्तव में भारतीय लोग हैं वे भौतिक चीजों में निपुण नहीं है, इतने निपुण नहीं है। इसलिए हम देखते हैं कि जो तथाकथित आजादी के हमको स्वतंत्रता मिली, पर उसके बाद में भारत की आर्थिक परिस्थिति या सामाजिक परिस्थिति को कुछ ज्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है, ज्यादा फायदा ज्यादा अच्छा नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि जो भारतवासी थे वे भौतिक भारतीय वासियों में ज्यादा भौतिक दक्षता नहीं है, भारतवासी जो है आध्यात्मिक दक्षता के। तो भक्तिसागर ठाकुर स्वतंत्रता स्वतंत्रता आंदोलन को ज्यादा महत्व नहीं दे रहे थे, बोल रहे थे कि हमारा महत्व क्या है, हमें प्रचार करना है, किसका, आध्यात्मिक तत्व का। और आध्यात्मिक तत्व का प्रचार हो जाएगा तो फिर जो अंग्रेज लोग हैं वो सिर्फ हमको राजनीतिक शक्ति नहीं देंगे, पॉलिटिकल पावर नहीं देंगे, दे विल सरेंडर टू आवर कल्चर, सांस्कृतिक रूप से हमारे अधीन हो जाएंगे। तो इसीलिए जब ये वाइसरॉय जब मायापुर में आए तो बाकी जो मायावादी संस्थाएं थे, बाकी हिंदू थे, वो निंदा करने लगे कि जो भारत पे राज्य कर रहे हैं उनको आप आपके मंदिर में क्यों बुला रहे हैं। तो भक्तिदान ठाकुर बोले कि वास्तव में अगर हम तुलना करेंगे तो जब मुसलमान लोग थे तो वो हमें मंदिर बांधने नहीं दे रहे थे, मंदिर तोड़ रहे थे, पर अंग्रेज लोग ये सब तो नहीं कर रहे हैं और वे भारत को मैनेज कर रहे हैं और हम प्रचार कर रहे हैं। तो वी सॉ दैट एज अ पार्टनरशिप के रूप में देखा कि हम इनको भौतिक चीजों को मैनेज कर रहे थे, हम आध्यात्मिक यहां का प्रचार करेंगे। और फिर 1934 में उन्होंने विचार किया कि हमें पाश्चात्य देश में प्रचार करने के लिए भक्तों को भेजना चाहिए। पहले से विचार कर रहे थे पर उस समय उन्होंने अपने शिष्यों को भेजा। तो वास्तव में इसके पहले दो तीन एक महत्वपूर्ण घटना है, वो उसने हमें समझना बड़ा महत्वपूर्ण है कि भक्तिसिद्धांत सिंह ठाकुर उस समय बंगाल में बहुत बड़ा व्हाट इज फेमाइन, अन्न की कमी आ गई थी, क्योंकि पानी नहीं था, उसके अन्न नहीं था, जब तक अन्न नहीं था अकाल आ गया था। चढ़ा गोकुलानंद भगवान की, जगन्नाथ भले सुभद्रा मैया की, गौर निताय चंद्र भगवान की जय। ऐसा अकाल आ गया था तो उस समय भक्तिसिद्धांत सिंह ठाकुर जो थे वो एक बड़ा थीस्टिक एग्जीबिशन, वो एक एग्जीबिशन बना रहे थे जहां पे धर्म का भी प्रचार हो और फिर जो भौतिक विकास है उसका भी प्रचार होता था। जो उनका एग्जीबिशन था वो सिर्फ धार्मिक चीजों के बारे में ही था, सेक्युलर चीजें भी थी उसमें, पर उसके लिए उन्होंने फंड एकत्र किए थे। तो भारतीय लोग कहने लगे उनसे कि ये जो पैसे आपने लाए ये अकाल में लोग अभी भूखे हैं उनको आप दे दो। तो भक्तिसिद्धांत सिंह ठाकुर बोले कि नहीं, ये भगवान की संपत्ति है, ये भगवान के गुणगान के लिए इस्तेमाल करनी चाहिए। तो उसके कारण बड़ी निंदा हुई उनकी। तो कभी कभी लोग सोच सकते हैं कि क्या है, भगवान का गुणगान चाहते हैं, भूखे लोग मर रहे हैं, पर नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर भक्तिसिद्धांत सिंह ठाकुर जब परिक्रमा को जाते थे, जैसे वृंदावन की परिक्रमा जब लेके जाते थे वो, तो तभी उनके जो गृहस्थ भक्त थे कोई भिखारी आते तो उनको दान नहीं देते थे। तो भक्तिसिद्धांत सिंह ठाकुर अपने प्रवचन निंदा करते थे। क्या निंदा करते थे? खंडन करते थे उसका। बोलते थे कि हम सोचते हैं कि हम हमारा पैसा हरि को देंगे इसलिए भिखारी को नहीं देंगे, पर हम देते भिखारी को भी नहीं हरि को भी नहीं और खुद इंडस्ट्री में लग जाते हैं। तो बोले कि अगर कोई गृहस्थ है, अगर कोई भिखारी आता है तो उसको प्रसाद देना चाहिए, प्रसाद नहीं है तो थोड़ा धन देना चाहिए उसको, हमें किसी को ना नहीं बोलना चाहिए। तो एक ओर से वो बोल रहे हैं कि आप भिखारियों को अन्न दो, पर दूसरी ओर से बोल रहे हैं अकाल की संपत्ति हम पैसा नहीं दे रहे। क्यों? क्योंकि क्या है, यहां पे महत्वपूर्ण चीज समझनी है कि जब क्रिश्चियन लोग, मैं वैसे बता रहा था कि लगभग 100 साल तक उन्होंने बौद्धिक स्तर पे हिंदुत्व पे हिंदू धर्म पे आक्रमण किया, आप ये क्या ऐसे अंधश्रद्धा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, पर उन्होंने देखा कि 100 साल के बाद भी ज्यादा हिंदू लोग क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट नहीं हो रहे। तो इसीलिए फिर उन्होंने अपना जो योजना है उसको परिवर्तित कर दिया। और योजना क्या थी कि अभी हम ये जो बौद्धिक स्तर पर आक्रमण करने से कुछ नहीं होने वाला है, हम गरीब लोगों के पास जाएंगे और गरीब लोगों को बोलेंगे कि आप गरीब हैं, आप क्रिश्चियन बन जाओ, हम आपको पैसा दे देंगे, आप बीमार हो हम आपको ठीक कर देंगे। और इससे क्या हो गया, बहुत से गरीब भारतवासी थे वो क्रिश्चियन बनने लगे। और ये देखकर जो मायावादी संस्थाएं थे वो सोचने लगे कि ये क्रिश्चियन क्यों बन रहे, हम इनको हिंदू रखना चाहिए। तो इसीलिए वे भी समाज कार्य में लग गए। समाज कार्य में, अभी समाज कार्य बुरा नहीं है, समाज सेवा कर, पर उनका क्या, उन्होंने गलत धारणा क्या कि उन्होंने इस तरह से गलत तत्वज्ञान निकाला कि वास्तव में मानव सेवा ही माधव सेवा है, कि आपको मंदिर में भगवान की पूजा करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ जो दरिद्र नारायण उसकी पूजा करो। अभी नारायण कभी दरिद्र नहीं होते, और समाज की सेवा गरीब लोग हैं उनकी सेवा करना कोई गलत चीज नहीं है, अच्छी चीज है। पर ये मायावादी लोग क्या भ्रांत प्रचार करने लग गए कि डिवोशनल सर्विस सोशल सर्विस इज अ सब्स्टिट्यूट फॉर डिवोशनल सर्विस, सोशल सर्विस इज सुपीरियर टू डिवोशनल सर्विस। मतलब क्या, समाज सेवा ये भक्तिमय सेवा से और अच्छी है। कि भक्तिमय सेवा से क्या होता है, आप सिर्फ भगवान को भोग चढ़ा रहे, आप गरीब लोगों को अन्न खिलाओ और ये और अच्छा है। अभी ये दोनों स्वतंत्र है, हम गरीब लोगों को अन्न भी दे सकते हैं, भगवान की पूजा भी करनी चाहिए। तो भगवान की पूजा ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवान ये प्रसन्न होते हैं, यस्मिन तुष्टम जगत तुष्टम, भगवान को हम संतुष्ट करते हैं, यज्ञ करते हैं तो फिर बारिश होती है, बारिश होती है तो निसर्ग से सारी धन संपत्ति आ जाती है। तो इसीलिए अगर कोई समाज सेवा करता है तो बुरी चीज नहीं है, पर कोई कहता है कि समाज सेवा हमें करनी चाहिए, भक्ति छोड़ देनी चाहिए, तो ये बहुत गलत है, ये बहुत गलत है। क्योंकि क्या है, फिर वो तथाकथित धर्म को त्याग करके सिर्फ सामाजिक कार्य में लग जाता है। तो इससे क्या, तो ये जो मायावादी लोगों का प्रचार था इससे भक्त बहुत, जो साधारण लोग बहुत प्रभावित हो गए, बोले हाँ गरीब लोगों को हमको अन्न देना चाहिए, गरीब लोगों को अन्न देना अच्छा है। पर हम देखते हैं उड़ुपी में आज भी जाएंगे, श्रीरंगम में जाएंगे तो भगवान को भोग चढ़ता है और जो भी व्यक्ति आते हैं उनको वहां पे अन्न प्रसाद फ्री में मिल जाता है। तो ऐसे नहीं है कि भगवान सब खा लेगा तो गरीब लोग कुछ नहीं मिलेगा, पर वास्तव में भक्ति अगर हम करते हैं तो भगवान का प्रचार करते हैं, भगवान का प्रसन्न करते हैं, तो भौतिक चीजें अपने आप आ जाती है। पर ये मायावादी लोग क्या कर रहे थे, बोले भगवान की भक्ति करने की कोई जरूरत नहीं है, आप सिर्फ गरीब लोगों को खिलाओ। तो ये जो धारणा थी ये बहुत खतरनाक है, क्योंकि इससे क्या होगा, इसे लोग सारा धर्म छोड़ देंगे। तो इसके कारण भक्ति सुधांशु ठाकुर इसका बहुत निंदा करते हैं कि मानव सेवा माधव सेवा नहीं है, मानव सेवा ही माधव सेवा, ये गलत है। वास्तव में माधव सेवा ही मानव सेवा है। अगर हम भगवान माधव की सेवा करते हैं तो उससे ही मानव का सबसे बड़ा कल्याण है। और प्रभुपाद जी को एक बार एक व्यक्ति, बड़ा पंडाल प्रोग्राम था, उसने बोला, प्रभुपाद जी प्रचार कर रहे थे, तो उनको एक व्यक्ति बोले कि स्वामी जी भारत एक गरीब देश है, इसको भक्ति की जरूरत नहीं है, हमको अन्न की जरूरत है। प्रभुपाद जी बोले कि आप मेरे मंदिर में आओ और चार नियमों का अगर पालन करते हैं और सोलहवां जप करते हैं तो सारी जिंदगी भर मैं आपको अन्न दूंगा, आपने जितने लोग आए आप सबको मैं अन्न दूंगा। तो व्यक्ति चुपचाप नीचे बैठ गया। मतलब समस्या यहाँ पे अन्न की नहीं है, समस्या क्या है, भक्ति की है। तो भक्ति सामंत महाराज एक बार डिग्री मेरा यात्रा में आए थे, बोले थे दुनिया में भोजन की कमी नहीं है, भजन की कमी है। भजन आ जाएगा तो भोजन अपने आप आ जाएगा। तो इसलिए भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने इसका खंडन किया और बहुत से लोग उनको समझ नहीं पाए, बोले क्या आप भूखे लोग हैं और आप उनको अन्न नहीं दे रहे। पर भक्ति सिद्धांत ठाकुर अपने जो तत्व थे उसमें विचल अचल थे, वो हिले नहीं। और जो सचमुच बुद्धिमान लोग थे वो समझने लगे कि वास्तव में ये क्या कर रहे हैं। और फिर उन्होंने इंग्लैंड में प्रचार करने के लिए अपने भक्तों को भेजा, तो जो शिष्यों को भेजा तो उन्होंने बहुत सुंदर प्रवचन दिया, तभी उनको संदेश दिया, ऐसे आपको प्रचार करने के सबसे महत्वपूर्ण क्या है, नादपि सुनीचेना। और उन्होंने एक योजना बताई कि कृष्ण की ये क्रिश्चियन लोगों ने और अंग्रेज लोगों ने बहुत सी निंदा की थी पहले से, तो उन्होंने सोचा कि हम कृष्ण के बारे में प्रचार नहीं करेंगे, हम चैतन्य महाप्रभु के बारे में प्रचार करेंगे। इसीलिए जब वो पहले गए तो उनका जो प्रधान ग्रंथ था श्री कृष्ण चैतन्य नाम के, वास्तव में भक्तिदास ठाकुर और उनके शिष्य साथ में ग्रंथ लिखते थे, और कभी वे अपना नाम डालते थे, कभी अपने शिष्यों का नाम डाल देते थे, तो उनके नाम को ज्यादा कुछ पहचान नहीं थी। तो जो उनके शिष्य निशिकांत सन्याल, उन्होंने जो ग्रंथ लिखा श्री कृष्ण चैतन्य, वास्तव में भक्तिदास ठाकुर ने स्वयं उसको लिखा है काफी हद तक, और जो उनके शिष्य ने लिखा उसको एडिट किया है, तो वो उनका प्रधान ग्रंथ हुआ। जैसे प्रभुपाद जी जब गए भागवतम लिखे गए, तो ऐसे वे जो थे उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के बारे में प्रचार करने के बताया, और काफी उनको जो बहुत अपेक्षा थी, आशा थी कि सुंदर प्रचार होगा। तो 1937 में जब वो इससे प्रचार कर रहे थे तो कई बार उनकी तबीयत जो है वो खराब हो रही थी, और तभी उन्होंने समझ गए कि अभी मेरा समय अंत हो रहा है। तो तभी उन्होंने क्या किया, शिष्यों को बताया कि आप एक जीबीसी बनाओ, आप गवर्निंग बॉडी बनाओ। तो वास्तव में शब्द है गवर्निंग बॉडी कमीशन, ये कहां से आता है, ये उस समय इंडियन रेलवे था, इंडियन रेलवे की जो मैनेजिंग बॉडी थी उसका नाम था गवर्निंग बॉडी कमीशन। तो भक्तिदास ठाकुर ने उधर से वो नाम ले लिया और बनाया कि आप ही बनाओ, क्योंकि क्या है भारतवासियों के लिए बहुत चमत्कारिक था। वास्तव में उस समय भारत बहुत इतना प्रगतिशील नहीं था, अगर आपने कुछ तभी के पिक्चर देखे तो लोग भारतवासियों को ट्रेन दे जाते, क्या ट्रेन में ही नहीं बैठते, वो ट्रेन के ऊपर बैठते थे, ट्रेन के बीच में बैठते थे, और फिर वो अभी भी हम देखते हैं बॉम्बे में लोकल में लोग कैसे ट्रैवल करते हैं। पर ट्रेन जो लोगों के लिए बहुत चमत्कारिक था, कैसे एक ही रास्ते में एक ही रेल पे चल रहे हैं लोग, पर क्या कभी कभी कोलाइड नहीं होता है। तो वो बहुत अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज किया था उन्होंने, पुणे के पास में एक जगह पे उन्होंने क्रिश्चियन लोग, अंग्रेज सरकार ने ब्रिज बनाया, तो वो ब्रिज का जो ऐसे हर एक चीज का एक्सपायरी डेट, दवाई आती है दवाई का एक्सपायरी डेट होता है, तो वैसे उन्होंने ब्रिज जो था वो 1810 में 1808 में बनाया था, और 200 साल उसका समय था, उसके बाद में ब्रिज खराब होने था। तो भारतवासी को पता नहीं है वो अंग्रेज सरकार के पास अभी तक रिकॉर्ड था, और उन्होंने इनको फोन, हमारे एक भक्त रेलवे में है, तो उन्होंने बता रहे थे कि उनको अंग्रेज सरकार से फोन आया कि अभी 200 साल हो रहे हैं, ये ब्रिज अभी खराब हो रहा है, ब्रिज को आपको ठीक करना चाहिए। तो उन्होंने जो बहुत भक्ति बोलते थे कि अंग्रेज लोग मैनेजमेंट से अच्छा कर रहे थे, ऑफकोर्स वो स्वार्थ से मैनेजमेंट कर रहे थे, धर्म के रूप में आक्रमण कर रहे थे, पर जो रेलवे का मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो रहा था, तो इसलिए भक्ति ठाकुर ने वो नाम ले लिया, बोला कि आप सब सहयोग से मैनेजमेंट करना चाहिए। पर क्या हुआ, वो उनके शिष्यों को समझ में नहीं आया, क्यों, क्या होता है कि वैदिक संस्कृति में उसके पहले ऐसा कोई ऐसा नहीं था, हर एक मठ का एक आचार्य होता है, और जो भक्ति में जैसा होता है जो शिष्य होता है वो उसकी श्रद्धा होती है कि मेरे गुरु जो है वो शुद्ध भक्त है, और जो गुरु जो आदेश देंगे वो कृष्ण का ही आदेश है, और उस आदेश का मैं पालन करूंगा तो हमारा सारा सारे जीवन का कल्याण हो जाएगा। तो वो भक्तिदान ठाकुर के शिष्य थे, वो सोचने लगे कि अगर हमें कमेटी बनाए गए तो कमेटी में कमेटी से कोई वाद विवाद होगा, तर्क वितर्क होगा, उसके बाद कभी वोटिंग होगा, और वोटिंग से जब वो जो मत निकलेगा वो कैसे भगवान की इच्छा हो सकती है, लेकिन भगवान की इच्छा से प्रकट नहीं हो सकती। वास्तव में हम देखते हैं कि महाभारत में भी वर्णन आता है कि जो राजा होता था, राजा के दो प्रकार के मंत्री होते थे, एक है ब्राह्मण मंत्री और दूसरे है क्षत्रिय मंत्री। तो ब्राह्मण मंत्री जो है वो शास्त्र को अपने जीवन में समाज राष्ट्र में कैसे उतारना है, शास्त्र को राष्ट्र में कैसे उतारना है, इसके बारे में वो मार्गदर्शन देते थे। और जो क्षत्रिय मंत्री होते थे वे राजकारोबार कैसे करना है उसके बारे में मार्गदर्शन देते थे। जैसे हम दशरथ महाराज देखते हैं कि सुमंत्र था वो उनका क्षत्रिय मंत्री था, और जो वशिष्ठ थे उनके ब्राह्मण मंत्री थे, राजगुरु जैसे थे वो। तो जब ऐसे कई अगर ब्राह्मण मंत्री हो गए तो ब्राह्मण अगर राजा को कोई उनसे राय चाहिए, कोई मार्गदर्शन चाहिए, तो ब्राह्मण मंत्रियों में भी अगर कोई मतभेद हो गया तो वो भी डेमोक्रेसी से, वो मेजोरिटी वोट से भी मार्गदर्शन करते थे। तो इसका प्रीसीडेंट, इसका जो पूर्व उदाहरण भी है जो भक्तिदास ठाकुर ने बताया था, पर उनके शिष्यों को समझ में नहीं आया, और उन्हें एक व्यक्ति को आचार्य बना दिया। दुर्भाग्यवश वो व्यक्ति अच्छा कार्य नहीं कर पाए, कुछ गलत कार्य में लग गए, और फिर सारी जो संस्था है उद्ध्वस्त हो गई। पर जब श्री प्रभुपाल, हम जानते हैं, मैं सारे समय में नहीं जाऊंगा, तो प्रभुपाल जी जब भक्तिदास ठाकुर से मिले तो उन्होंने देखा कि वेरी नाइस चेंजिंग पर्सन, बहुत दिव्य व्यक्ति है, और उनसे प्रेरणा लेकर उन्होंने सारे विश्वभर में प्रचार करने का फैसला किया। और जब प्रचार करने का फैसला किया, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण महामार्ग की संस्था स्थापना की उन्होंने संस्था, तो उन्होंने उन 70 में ही जीबीसी बना दिया। तो वो जानते थे कि उनके शिष्यों को समस्या आ सकती है, इसलिए पहले से अनुभव दे दिया कि आपको कैसे प्रचार करना चाहिए। अब प्रभुपाद जी बोलते थे कि आई एम ऑल्सो मेंबर ऑफ द जीबीसी, कि जीबीसी का जो फैसला होगा वो मैं भी स्वीकार करूंगा, मैं भी उसका एक सदस्य हूं। और इस तरह से उन्होंने जो भक्तिदास ठाकुर और उनके शिष्य पुरानी के शिष्य डायरेक्टली पुरानी कर पाए, और उसके कारण गौड़िया मत का अस्त व्यस्त हो गया है, वो श्री प्रभुपाद जी ने पूरा किया। और जो भक्तिदास ठाकुर की जो इच्छा थी कि सारे विश्वभर में प्रचार हो, वो श्री प्रभुपाद जी ने पूरा किया। और इतना ही नहीं, श्री प्रभुपाद जी हमेशा अपने गुरुदेव को श्रेय दिया करते थे। जब प्रभुपाद जी कैनेडा में थे तो भक्तिदास ठाकुर की व्यास लॉस एंजल्स में थे, वो तभी प्रभुपाद जी की व्यास भक्तिदास ठाकुर की व्यास पूजा थी, तो तमाल कृष्ण महाराज जी वहां पे प्रेसिडेंट थे। तो तभी सुबह उनका तिरुभाव आविर्भाव दिखता शायद आदमी एग्जैक्टली, तो फिर भक्तिदास प्रभुपाद जी ने उनको बुलाया कि फीस्ट कुकिंग कैसे चल रहा है। तो वो जो उनके सर्वेंट थे बोले कि हमको तमाल कृष्ण महाराज ने बताया है कि हम ये प्रोग्राम शाम को रखेंगे क्योंकि शाम को ज्यादा लोग आ सकते हैं। तो प्रभुपाद जी एकदम क्रोध हो गए। प्रभुपाद जी बोले जो आचार्य का तिरुभाव है वो हम भौतिकवादियों के लोगों के पेट को प्रसन्न करने के लिए नहीं कर रहे, हम वो आचार्य को प्रसन्न करने के लिए कर रहे, तो हमको जो तिरुभाव उत्सव है दोपहर को ही रखना चाहिए। फिर तभी ऑलरेडी 10:30 बज गया था। प्रभुपाद जी स्वयं आ गए किचन में, कहाँ कुकिंग कहाँ चल रहा है, प्रभुपाद जी हम शाम को कुकिंग कर रहे हैं, शाम को नहीं अभी करना चाहिए। और प्रभुपाद जी स्वयं किचन में चले गए और स्वयं सारा कुकिंग कर दिया, और अकेले प्रभुपाद जी ने एक घंटे में सवा घंटे में कुछ सभी 24 आइटम प्रभुपाद जी ने बना दिया, और स्वादिष्ट आइटम। तो प्रभुपाद जी हर एक चीज में बड़े दक्ष थे। और फिर सब भक्तों ने इतने सारे आयोजन देखे और प्रभुपाद जी स्वयं कुकिंग किया तो बहुत प्रसन्न हो गए। पर जब सब ऑफरिंग हुआ, प्रभुपाद जी ने अपने गुरु महाराज का गुणगान किया, प्रवचन दिया, कीर्तन किया, भजन किया, फिर बाद में जब प्रभुपाद जी प्रसाद देने गए तो प्रभुपाद जी ने बिल्कुल प्रसाद नहीं लिया, थोड़ा सा प्रसाद लिया वापस आ गए। उनके शिष्य बताए थे कि प्रभुपाद जी बहुत नाराज थे। क्यों नाराज थे? प्रभुपाद जी बोले कि मैं जो भी कर रहा हूं मेरे गुरु महाराज की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूं, अगर आप मेरे गुरु महाराज का आदर नहीं करेंगे तो फिर मैं मेरे गुरु महाराज की सेवा कैसे कर सकता हूं। तो ये प्रभुपाद जी का भाव था। तो एक बार ऐसे भक्तिदास ठाकुर का तिरुभाव दिन था, तो उस दिन प्रभुपाद जी ने प्रवचन दिया, प्रवचन के बाद क्या किया उन्होंने, अपने सारे शिष्यों के नाम उन्होंने पढ़े। और भक्त बोले आप सारे शिष्यों के नाम क्यों पढ़ रहे? तो प्रभुपाद जी बड़े, उनकी आंखों से थोड़े आंसू जैसे आ रहे थे। प्रभुपाद जी बोले कि ऑल ऑफ यू आर माई ऑफरिंग टू माई स्पिरिचुअल मास्टर, कि आप सब मेरी भेंट है, मैं मेरे गुरु महाराज को अर्पण कर रहा हूँ। तो ये प्रभुपाद जी का हमेशा भाव था कि अपने गुरु महाराज के सेवक थे। और एक सुंदर प्रवचन है प्रभुपाद जी का, प्रभुपाद जी उस प्रवचन में बोलते हैं कि कैसे है? मैं जब अकेला आया पर यहाँ पे हम पाश्चात्य देशों में प्रचार करने के लिए, तो कोई साथ नहीं था, पर मेरे गुरु महाराज हमेशा मुझे देख रहे, मेरा पालन कर रहे हैं, और मेरे कोई गुरु भाइयों ने मेरी मदद नहीं की, इसीलिए मेरे गुरु महाराज ने आप सबको भेजा है, आप सबको मेरे गुरु महाराज ने भेजा है, इसलिए मैं आप सबको मेरे गुरु महाराज के प्रतिनिधि के रूप में देखता हूँ, और आप सब मुझे प्रभुपाद जी हाथ जोड़ के अपने शिष्यों से बोले। उनके शिष्य तो जानते थे कि वे तो बहुत ही पतित परिस्थिति आए थे पहले, पर प्रभुपाद जी उनको शेयर दे रहे, वो देख रहे हैं क्या, वो नहीं देख रहे कि मैं आप सबका गुरु हूँ और आप सब मेरे शिष्य हैं, मैं आपका उद्धार कर रहा हूँ। प्रभुपाद जी का ये भाव नहीं था। प्रभुपाद जी का भाव क्या था कि आप सबको मैं अकेला प्रयास कर रहा था मेरे गुरु महाराज के आदेश का पालन करने का, और मैं अकेला क्या कर सकता था, इसीलिए मेरे प्रयास को देखकर मेरे गुरु महाराज ने आप सबको भेजा है, और आप सब उनके प्रतिनिधि हो, और मैं आपका बहुत कृतज्ञ हूँ। प्रभुपाद जी बोला, प्रभुपाद जी ने हाथ जोड़ा और उनके जो कंठ भराया। प्रभुपाद जी बोले प्लीज हेल्प मी इन स्प्रेडिंग द मैसेज ऑफ माय स्पिरिचुअल मास्टर, कृपया अपने सहयोग करो मेरा जो गुरु महाराज का संदेश है, उनका जो मिशन है उसके प्रचार में। तो ये प्रभुपाद जी का भाव, अपने गुरु महाराज के प्रति सेवा भाव था, और हम सबसे भी यही अपेक्षा थी कि जो हमारे आचार्यों ने इतनी मेहनत करके इतनी कठिनाई से प्रचार किया है, वह हम उसका संरक्षण करें और उस आंदोलन को हमारी क्षमता के अनुसार बढ़ाए। तो एक सुंदर भक्ति सिद्धांत रिजापुर के तीरोभाव पर के एक रास पूजा के उत्सव पर उनके शिष्य थे श्रीधर महाराज। प्रभुपाद जी श्रीधर महाराज के बहुत अच्छे संबंध थे। उन्होंने एक अष्टकम लिखा था अपने गुरु महाराज की प्रसन्नता के लिए, तो हम उसको पढ़ेंगे। कैन एनीबडी सिंग दिस? तो मैं उसका अर्थ पढ़ता हूं। जैसे प्रभुपाद जी ने अपनी गुरु पूजा शुरू की थी, गुरु का आदर देना चाहिए, तो गुरु पूजा के उन्होंने श्री गुरुचरण पद्म ये बताया था मैं गाना चाहिए। तो वैसे ही जब ये आए थे तो प्रभुपाद जी भक्तिशांत ठाकुर ने बोला था कि ये आप रोज गाना चाहिए। तो भक्तिशांत ठाकुर का ये नाम था, वो श्रील प्रभुपाद था, कि हे श्रील प्रभुपाद, आपके जो चरण कमल है वो कोटि कोटि शुद्ध और सक्षम भक्त उसकी पूजा करते हैं, और जो हरिनाम संकीर्तन की विधि है वो प्रचार करने के आप सबसे बड़े दक्ष आचार्य हो। आपके जो दिव्य चरण कमल है वह परम आराध्य है, और वह जो है वो निर्भय और आशीर्वाद सबको प्रदान करते हैं, और आपके चरण कमलों के जो तट है उससे जो ज्योति आ रही है उस ज्योति को मैं सदैव नमन करता हूं। आप सारे जो भक्त है भक्तों के सम्राट है, और जो पति जीव है उनको आप आलिंगन करके उद्धार करते हैं, और इस दुनिया में जो वांछक वांछित कुछ लोग फंस रहे हैं कुछ लोग फंसा रहे हैं, इन सबको उद्धार करने वाले आप इकलौते व्यक्ति हो। मैं आपके चरण कमलों की ज्योति को प्रणाम करता हूँ। आपका जो रूप है इतना दिव्य और सुंदर है, आपका जो रूप है वो आपका जो ऊंचा रूप है वो ज्योतिमान है, और आपका जो सुंदर शरीर है वो एक सुनहरे कमल के समान है। जैसे है जो चंद्रमा के चारों ओर तारे घूमते हैं, उस तरह से आप एक चंद्रमा के समान हो, और आपके शिष्य है तारों के समान है, जो हमेशा आपकी इच्छाओं को पूरे करने के लिए आतुर रहते हैं, और आप जब कुछ आदेश देते हो तो आपके सिंह जैसे गर्जन जो है वो सबको प्रेरित करके और भय और आदर के साथ वे आपके आदेश का पालन करते हैं, और आपके चरण कमलों से सारे जीवों को बहुत परम आशीर्वाद प्रदान कर रहे हो। आपने श्री गौरांग महाप्रभु के दिव्य मायापुर धाम है उसकी जो ख्याति है सारे विश्व में फैलाई है और सारे ब्रह्मांड में उनकी कृपा के बारे में बताया है और आप कृपा के द्वारा आपके उदाहरण के द्वारा श्री गौरांग महाप्रभु के जो चरण है वो अपने उन्होंने उनको आपने अपने शिष्यों के हृदय में प्रस्थापित किया है। चैतन्य महाप्रभु के जो शिष्य के भक्त है उन सबके आप विश्व आचार्य हो। आपने अपने गुरुदेव का आश्रय ग्रहण किया है और आप भक्तिनाथ ठाकुर के चरण कमलों का आदेश पालन सदैव करते हो और आपकी जो प्रखर भक्ति है उससे जो छह गोस्वामी है उनमें से आप उनके आप अंतरंग पार्षद बन गए हो और तत्व ज्ञान के गूढ़ रहस्य है वह सदैव आपके व्यक्तित्व को आभूषित विभूषित करते हैं के जीव गोस्वामी जो तत्व ज्ञान है उसको आप आपके संकल्प आपके प्रवचनों से आप विस्तारित करते विभूषित करते हो और आप कृष्णदास कविराज गोस्वामी नरोत्तम दास ठाकुर के पार्षद हो। आप हरि कीर्तन के मूर्तिमान रूप हो और इससे आप सारे जीवात्माओं का उद्धार करते हो और पृथ्वी के भाई पृथ्वी का जो बोझा है उसको आप निकालते हो और एक पिता से भी अधिक प्रेम आप सारे गौरांग महाप्रभु के भक्तों को करते हो और जिस तरह से एक कल्प वृक्ष साहब की इच्छाओं का पूरा करता है आप सब भक्तों के दिव्य इच्छाओं को पूरा करते हो। आप एक पेड़ के समान बहुत ही सहिष्णु होकर सब जो अपमान बद्ध जीव करते हैं आप तो उसे सहन करते हो और उनको आशीर्वाद प्रदान करते हो और जो बड़ी बड़ी देवी देवता है वो भी आपके चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करते हैं। आप जो जीवन के सबसे बड़ी संपत्ति है कृष्ण प्रेम उसका भंडार है उसके आप रक्षण करता हो रखवाले हो और सब महाभागवत भक्तों में से आप सर्वश्रेष्ठ हो और जो बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए आपने सन्यासी का वस्त्र धारण किया है और सारे सन्यासियों के आप श्रेष्ठ हो उनके लिए आप पूजनीय हो। आप राधा रानी के शुद्ध भक्त हो और मेरी इकलौती इच्छा है कि मैं हमेशा आपके चरण कमलों का एक धूल बनकर सेवा करते रहूं। आपकी शक्ति से सारा विश्व का उद्धार हो रहा है आपके चरण कमलों के ज्योति को मैं साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। श्री भक्ति सिद्धांत ठाकुर की श्री भक्ति सिद्धांत ठाकुर तिरुभाव महामहोत्सव की किन सिंह ठीक है ना संबंध है हम सब पत्रकार ठाकुर के सामने आते श्री भक्त सिद्धांत श्री ठाकुर की श्री प्रभुपाद की श्री भक्त सिद्धांत श्री ठाकुर शिरोभाव महामहोत्सव की गौर भक्त वृंद की ताई गौर प्रेमानंदे।